آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فرقان خان۔ وزیراعظم نریندر مودی نے وارانسی میں 6,700 کروڑ روپے سے زیادہ کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے اپنے پارلیمانی حلقے میں آر جے شنکرا آئی اسپتال کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ملک کے حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اگلے 5 سالوں میں 75,000 میڈیکل سیٹوں کا اضافہ کرے گی۔ بی جے پی نے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے 99 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی ہے۔ دلی پولیس نے آج صبح روہینی میں ہوئے دھماکے کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل کرناٹک اور وسطی مہاراشٹر میں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ سمندری طوفان دانا کے جمعرات کی صبح تک اڑیسہ کے ساحل پر آنے کی توقع ہے۔ اور کھیلوں میں، وادی کشمیر کے سری نگر میں اب تک کا پہلا بین الاقوامی میراتھن منعقد ہوا۔ اور ہاکی میں، بھارتی مردوں کی جونیئر ٹیم نے ملیشیا میں سلطان آف جوہر کپ کے گروپ سٹیج میچ میں برطانیہ کو 6-4 سے شکست دی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی سے 6,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ ان میں مدھیہ پردیش میں ریوا، چھتیس گڑھ میں امبیکاپور اور اتر پردیش میں سہارنپور ہوائی اڈوں کا افتتاح شامل ہے، جنہیں علاقائی کنیکٹیویٹی اسکیم اڑان کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم، ہنر کے فروغ، کھیل کود، حفظان صحت، سیاحت اور دیگر شعبوں سے متعلق ترقیاتی پروجیکٹ آج وارانسی کو پیش کیے گئے ہیں، جن سے لوگوں کا نہ صرف معیار زندگی بہتر ہوگا بلکہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
ہزاروں کروڑ روپے کے پروجیکٹ کا شلانیاس اور لوکارپن ہوا ہے۔ ان میں دیش اور یو پی کے وکاس کی اس کو نئی اونچائی دینے والے پروجیکٹ بھی ہیں۔ آج یو پی، بہار، پشچم بنگال، ایم پی اور چھتیس گڑھ میں الگ الگ ایئرپورٹس کا شبھارمبھ ہوا ہے۔ اس میں بابت پورہ ایئرپورٹ کے علاوہ آگرہ اور سہارنپور کا سرساواں ایئرپورٹ بھی شامل ہے۔
جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت نے گزشتہ 10 برس کے دوران ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے ایک بڑی مہم شروع کی ہے، تاکہ عوام کے لیے خدمات کو بہتر بنایا جا سکے اور سرمایہ کاری کے ذریعے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ کاشی ایک ماڈل سٹی ہے، جہاں وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ معاشرے کی ترقی تبھی ہوتی ہے جب اس کی خواتین اور نوجوانوں کو با اختیار بنایا جائے، وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے خواتین کو نئی طاقت دی ہے۔ انہوں نے مدرا یوجنا جیسی اسکیموں کا ذکر کیا، جن کے تحت کروڑوں خواتین کو اپنا خود کا روزگار شروع کرنے کے لیے قرضوں کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس تقریب میں اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلی نے وارانسی کے عوام کو ترقی کا یہ دیوالی تحفہ پیش کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے مدھیہ پردیش کے ریوا ہوائی اڈے، چھتیس گڑھ کے امبیکاپور میں ماں مہامایا ہوائی اڈے اور اتر پردیش کے سہارنپور میں سرساوا ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارتوں کا افتتاح کیا۔ ان اقدامات سے کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کے ان کی حکومت کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے وارانسی میں لال بہادر شاستری بین الاقوامی ہوائی اڈے کے رن وے کی توسیع اور ایک نئی ٹرمینل عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ کھیلوں کے لیے اعلی معیار کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے اپنے ویژن کے مطابق وزیراعظم نے کھیلو انڈیا اسکیم اور سمارٹ سٹی مشن کے تحت وارانسی اسپورٹس کمپلیکس کی ترقی کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے سارناتھ میں بودھ مذہب سے متعلق سیاحتی ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے باناسور مندر اور گرودھام مندر میں سیاحتی ترقیاتی کاموں اور پارکوں کی تزئین کاری جیسے دوسرے کئی اقدامات کی بھی شروعات کی۔ اس سے پہلے دن میں وزیراعظم مودی نے وارانسی میں تمل ناڈو کے کانچی کاما کوٹی پیٹھ کے جگت گرو سری شنکرا وجیندرا سرسوتی سوامی گل کی موجودگی میں آر جے شنکرا آئی اسپتال کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے اعلان کیا کہ سرکار ملک میں حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اگلے 5 سالوں میں 75,000 میڈیکل سیٹ کا اضافہ کرے گی۔
देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बीते दशक में मेडिकल की हजारों नई सीटें जोड़ी गई है। अब हमने तय किया है कि आने वाले 5 साल में 75,000 और सीटें जोड़ी जाएगी।
वज़ीर आज़म ने हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक मरकजी सरकार के कई इकदाम का जिक्र किया जिससे आवाम को सस्ता और मुनासिब कीमत पर इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में पूर्वांचल में 5,500 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए गए हैं जिसकी वजह से मुनासिब कीमत पर दवाइयां मिल रही हैं और इससे दवाई पर खर्च में औसतन 25% की कमी आई है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि नए आई अस्पताल से बुजुर्गों और बच्चों दोनों को फायदा होगा और शंकराचार्य और संकरा ट्रस्ट से अपील की कि वो बिहार में भी एक सेंटर खोलने पर गौर करें।
आज काशी को, पूर्वांचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिला है। आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल आज से जन जन के लिए समर्पित है। ये आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल वाराणसी और इस क्षेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा।
तकरीब के दौरान कांची शंकराचार्य ने वजीर आजम मोदी की तरक्कियाती कोशिशों की सताइश की। उन्होंने मरकज की एनडीए सरकार की तारीफ की और कहा कि हुक्मरानी के लिए यह एक रोल मॉडल है। उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए वजीर आजम मोदी की क्यादत की तारीफ की और एनडीए का एक नया मफहूम पेश किया, नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन। ये शहरियों के तहफ्फुज, आसानी और खुद मुख्तारी पर मरकूज हुक्मरानी का एक नमूना है। शंकराचार्य ने इस बात को उजागर किया कि भारत मजबूत क्यादत की वजह से तरक्की कर रहा है। उन्होंने वजीर आजम मोदी के तहीं तशक्कुर का इजहार किया जो बकौल उनके खुदा की तरफ से एक नेमत है। उन्होंने मुल्क के बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ सोमनाथ और केदारनाथ में बहाली के कामों की तरफ इशारा करते हुए सकाफती अहया में सरकार की कोशिशों का भी एतराफ किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस नागपुर जुनूब मगरबी असेंबली हलके से चुनाव लड़ेंगे जबकि महाराष्ट्र बीजेपी के सरबराह चंद्रशेखर बावंकुले कामथी से पार्टी उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी है। 288 मेंबरान पर मुश्तमिल रियासती असेंबली के इंतखाबात एक ही मरहले में 20 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए INDIA ब्लॉक के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे जबकि 11 सीटें आरजेडी और CPIML को दी गई हैं। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से गैर कानूनी साजो सामान और 3,15,00,000 रुपए से ज्यादा की रकम जब्त की गई है। चीफ इंतखाबी अफसर के रवि कुमार ने बताया कि हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो मिसाली जाब्ते अखलाक के निफास पर सख्ती बरतें। कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक किसी भी शख्स को इलेक्शन की मुद्दत के दौरान 50,000 रुपये तक साथ रखने की इजाजत है। अगर रकम 50,000 रुपये से ज्यादा है लेकिन 10,00,000 से कम है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। जिला कमिश्नर की सरबराही वाली कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि यह रकम सही मकासद के लिए थी या फिर इसका कोई और मकसद था। 10,00,000 रुपए से ज्यादा की रकम मजीद तफ्तीश के लिए इनकम टैक्स महकमे के सुपुर्द कर दी जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज सुबह कौमी राजधानी के रोहिणी इलाके में मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के एक स्कूल के बाहर हुए धमाके के केस में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह केस प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और तफ्तीश जारी है। धमाके के बारे में इत्तला मिलने पर दिल्ली पुलिस की एक टीम जाए मौके पर पहुंची जहां उसने देखा कि स्कूल की दीवार को नुकसान पहुंचा है। धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी, कौमी सिक्योरिटी गार्ड समेत मुख्तलिफ एजेंसियों की टीमों ने जाए हादसे का मुआयना किया। इसी दौरान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि एक कसीर रुखी तफ्तीश जारी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो तफ्तीश की पेशरफ्त पर नजर रखे हुए हैं। जनाब सक्सेना ने लोगों से भी अपील की कि वो मुतमईन रहें। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉ मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली में ई श्रम पोर्टल का आगाज करेंगे। ये गैर मुनज्जम वर्करों के लिए एक ही जगह हल फराहम करेगा। ये प्लेटफॉर्म इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक सालसी के तौर पर काम करेगा कि गैर मुनज्जम शोबे के वर्करों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों तक आसान रसाई फराहम हो सके। इसका असल मकसद एक वाहिद प्लेटफॉर्म पर मौसर अंदाज में गैर मुनज्जम वर्करों के लिए तमाम समाजी, सिक्योरिटी और फलाही स्कीमों के मुस्तफिदीन के बारे में मालूमात को यकजा करना है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इंटरमीडिएट की एक तालिबा की अफसोसनाक मौत पर दुख का इजहार किया है। कडापा जिले के बादवेल में एक नौजवान शख्स ने इस तालिबा को आग के हवाले कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वजीर आला ने कहा है कि यह निहायत अफसोस की बात है कि एक होनहार तालिबा इस तरह के वहशियाना अमल का शिकार हुई। कल से ही वजीर आला इस हादसे को लेकर लगातार अहलकारों से राब्ते में हैं। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि मशरकी वस्ता, खलीज बंगाल और आसपास के शिमाली अंडमान समंदर में अगले 24 घंटे के दौरान हवा के कम दबाव का हल्का बनने की तवक्को है। उम्मीद है कि यह मगरिब शिमाल मगरिब की तरफ बढ़कर मंगल की सुबह तक इसमें इजाफे के साथ बुध तक एक समंदरी तूफान में तब्दील हो जाएगा। शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ने के साथ 24 अक्टूबर की सुबह तक यह शिमाल मगरबी खलीज बंगाल, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के साहिलों तक पहुंच जाएगा। आईएमडी ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वह अगले 4 दिनों तक शिमाल खलीज बंगाल, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के साहिलों पर न जाएं। आईएमडी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला और जुनूबी दाखिली कर्नाटक में अगले 3 दिनों के लिए तेज बारिश की भी पेशगोई की है। आईएमडी ने कर्नाटक और वस्ती महाराष्ट्र के लिए भी कल तेज बारिश की पेशगोई की है। ओडिशा शदीद समंदरी तूफान दाना के इम्कानी असरात से निमटने की तैयारी कर रहा है, जिसके जुमेरात की सुबह आने का इम्कान है। रियासती सरकार साहिली जिलों में रहने वाले लोगों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की खातिर जामे इकदाम कर रही है। किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत और गैर सरकारी एजेंसियों के दरमियान इश्तराक की कोशिशों के सिलसिले में भुवनेश्वर में आला सतह की मीटिंगें हुई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
साहिली उड़ीसा में समंदरी तूफान आने का सिलसिला 1999 से खतरनाक हद तक तेज हो गया है। 1999 के बाद से उड़ीसा में 9 समंदरी तूफान आए हैं। इनमें से 2 इंतहाई तबाहकुन थे, 2013 में फाइलिन और 2019 में फानी। उड़ीसा एक बार फिर शदीद समंदरी तूफान दाना से निमटने की तैयारी कर रहा है, जो उसके साहिल की जानिब बढ़ रहा है। रियासती सरकार हर सतह पर तैयारियां कर रही है ताकि साहिली जिलों में रहने वाले लोगों की हिफाजत की जा सके और उन्हें सभी जरूरी अशिया और हिफाजत सेहत से मुतालिक सहूलतें दस्तयाब कराई जा सकें। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
कश्मीर वादी में आज श्रीनगर में पहले बैन अल-अक़वामी मैराथन का अहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह पोलो व्यू से मैराथन दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। 42 किलोमीटर की मुकम्मल मैराथन और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में मुल्क भर के और 12 बैरूनी मुल्कों के 1700 अफराद ने हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मैराथन दौड़ जीतने वालों को एजाज बख्शा। हॉकी में भारतीय मर्दों की जूनियर टीम ने आज मलेशिया में सुल्तान ऑफ जौहर कप के ग्रुप स्टेज के एक मैच में बर्तानिया को 6-4 से हरा दिया। दिलराज सिंह और शारदा नंद तिवारी ने टीम के लिए 2-2 गोल किए, जबकि मोहम्मद कौनैन दाद और मनमीत सिंह ने 1-1 गोल किए। बर्तानिया की तरफ से रोरी पेनरोज और माइकल रॉयडन ने 2-2 गोल किए। ये भारत के लिए टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले उसने कल इफ्तिताही मैच में जापान को शिकस्त दी थी। 27वें कुल हिंद फॉरेस्ट स्पोर्ट मुकाबले आज रायपुर में अख्तिताम पजीर हो गए। छत्तीसगढ़ 174 तमगे हासिल करके मजमूई तौर पर चैंपियन बना। केरला 103 तमगों के साथ दूसरे मकाम पर, जबकि मध्य प्रदेश 88 तमगे हासिल करके तीसरे मकाम पर रहा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने अपने पार्लियामानी हल्के में आरजे शंकरा आई अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि सरकार मुल्क के हिफाजत सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीटों का इजाफा करेगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह रोहिणी में हुए धमाके के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की है। महकमा मौसमियात ने कल कर्नाटक और वस्ती महाराष्ट्र में तेज बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।